Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، جو کہ سورہ انعام کی ان آیات پر انشاءاللہ مشتمل ہوگی، 15 سے لے کے 21 تک. تو یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کی جلد نمبر 3 سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کے معارف و مسائل پڑھنا آج ہم نے شروع کرنا ہے، کیونکہ ترجمہ اور خلاف تفسیر ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ کے مکمل کر لی تھی. تو ان آیات کے معارف و مسائل میں، یعنی ان کی معرفت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں، اور اپنے دین کے علماء کو توفیق عطا فرمائی کہ ان کو سمجھ کر کے پھر آگے ہمارے سامنے بیان فرمائیں، ٹھیک ہے. اور شرعی مسائل اگر ان کے اندر سے کوئی ایسے نکلتے ہیں جو کہ علماء نے ڈرائیو کیے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک منٹ، یہ مردوں کا سیشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو معارف و مسائل میں حضرت لکھتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا عذاب ایک خاص انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو مجھے بھی قیامت کے عذاب کا خوف ہے. یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی الانبیاء کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے، ٹھیک ہے. تو اگرچہ کہ ہم یہ کل بھی پڑھ چکے تھے، بلکہ اس سے آگے ہی ہم پڑھ چکے تھے، اگلے صفحے کی آخر تک ہم پڑھ چکے تھے. تو اس میں ایک اور بات بس ذہن میں جو آتی ہے وہ بیان کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات کے اوپر ہمارے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے نا، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے ماڈل ہیں، تو ان کو جس طرح سے فالو کرنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کے طور طریقے پہ عمل کرنا، ان کے جو ہے وہ سوچ اور افکار کے اوپر عمل کرنا، ان کی فکروں پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بطور ماڈل کے پیش کیا نا ہمارے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری طرف بھی بطور ماڈل کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا. دوسری طرف سے کیا مراد ہے کہ دیکھو، یعنی ایسے مقامات بھی رکھے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ
ریکارڈنگ ان پروگرس.
نہیں، یہ چلے ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا اس کو. جی، تو ایسے بھی مقامات رکھے ہیں کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو نا سامنے رکھ کے فرمایا کہ اگر آپ بھی ایسا کام کریں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی اپنی زبان سے بھی یہ بات کہلوائی کہ اگر میں بھی ایسا کوئی کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ نبی علیہ السلام سے اس کا احتمال ہی کوئی نہیں تھا، लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम को सामने क्यों रखा अल्लाह ताला ने कि इस किसी बात की इंतहा दर्जे अहमियत समझाने के लिए कि ये कितनी अहम बात है कि अगर मेरे महबूब भी इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे या इसके खिलाफ अमल करेंगे तो देखो मैं तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें क्यों छोड़ूं फिर मैं। ठीक है, जैसे कि सूरह बनी इसराइल जो कि इसी सूरत से पहले हमने इस दुरूस के सिलसिले में पढ़ के मुकम्मल करी है, उनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मौका उस सूरत में भी ऐसे मुकामात रखे कि अगर आपने दीन में तब्दीली करने की कोई कोशिश करी, अगर आपने इन काफिरों की बात मान करके इनकी दोस्ती की ऑफर को कबूल करके मेरे दीन के अंदर जरा बराबर भी तब्दीली करी और मेरी तरफ उस बात को मंसूब किया जो कि मैंने आपके ऊपर नाजिल नहीं फरमाई है, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। कितनी सख्त अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वहां पर। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम से कोई ये एहतमाल था? हरगिज इसका कोई एहतमाल नहीं था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में ये बात मौजूद थी कि मेरे महबूब ने तो ये काम करना ही नहीं है, हरगिज नहीं करना है। फिर क्यों नबी अलैहिस्सलाम को गोया कि कहते हैं ना निशाने पे रखा, राइट, या सामने रखा, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी वाली बातें फरमाई? क्यों फरमाई? क्योंकि ये वाला काम जो है, ये वाला मसला जो है वो इतना अहम है, इतना अहम है कि हमारे अंदर इसको इस बात की अहमियत को घुसाने के लिए, टू लेट दिस सिंक इन, अंग्रेजी में कहते हैं टू लेट दिस सिंक इन, कि हमारे समझ में आ जाए ये बात अच्छी तरीके से, अल्लाह ताला ने ऐसा तरीका इस्तेमाल फरमाया कि अपने हबीब अलैहिस्सलाम को गोया के टारगेट बना करके ऐसी बात फरमाई। उसी तरीके से यहां पर भी अपने हबीब अलैहिस्सलाम को टारगेट बना करके ऐसी बात फरमाई कि मेरे हुक्मों की खिलाफ वर्जी जो है ना ये मामूली बात नहीं है, ये तुम तो किया, अगर मेरे महबूब भी करेंगे तो उनके ऊपर भी अल्लाह का अजाब आ सकता है। अल्लाह करे मैं बात समझ में आ जाए, राइट। तो अल्लाह के हुक्मों को हल्का समझना, अल्लाह की नाफरमानी को जो है वो हल्का समझना, ये अजाब से खाली नहीं है, ये अजाब के बगैर नहीं है। ठीक है, ये बात हम आवाम के ऊपर अप्लाई होती है, और जो जरा इल्म वाले हैं जिनको के जरा वो वाली अथॉरिटी मिली हुई है कि जी उन्होंने दीन के उलूम की हिफाजत करनी है, उनको ये वाली बात समझ में आ जाए कि अगर दीन के उलूम में उन्होंने जरा सी गड़बड़ करने की कोशिश करी, जरा सी तब्दीली करने की कोशिश करी कि काफिरों की दोस्ती मिल जाएगी, काफिर जो है वो खुश हो जाएंगे, या फासिक फाजर मुसलमान उनसे जो है वो राजी हो जाएंगे, राइट, और उनको जरा ज्यादा हदीये दे दिया करेंगे और उनको जरा ज्यादा जो है वो उनकी मदद कर दिया करेंगे इस वजह से या जिस वजह से भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन उलमाए कराम को भी हरगिज नहीं बख्शेगा। तो अवाम के लिए भी और उलमा के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद के अंदर हुज्जत तमाम कर दी, हम सब के लिए हुज्जत तमाम कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ऐसे मॉडल बना करके, सजा के मामले में भी मॉडल बना करके, या उस बोला सजा दी नहीं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सजा वाला कोई काम किया, लेकिन बात समझाने के लिए। किसी को अगर ये पॉइंट समझ में ना आया हो ना तो वो या तो वो अभी क्लास में पूछ करके इसको क्लियर करे या इसको अपनी जिंदगी में क्लियर करके आगे जिंदगी बढ़ाए, इसकी इसके बारे में गलत फहमी या कम फहमी के साथ जो है ना बात नहीं बनेगी। ठीक है, कि ये बात भी समझ में नहीं आ रही और साथ साथ जो है वो दीन दीन भी खेल रहे हैं, राइट, और साथ साथ खूब जो है वो दीन 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 का इल्म हासिल कर रहे हैं और आलमा बन रहे हैं और आलिम बन रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं और यूट्यूब की वीडियो सुन रहे हैं और न जाने क्या क्या जो है वो फिका की चीजें सीख रहे हैं, लेकिन ये जो अहम तरीन बातें यही सिंक नहीं होकर के दे रही है हमारे अंदर, यही हमारे अंदर घुस करके नहीं दे रही, बाकी सारी चीजें घुसाए चले जा रहे हैं अपने अंदर, स्टफ किए जा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर बाकी सारी चीजों को, लेकिन ये बात नहीं है अपने दिमाग के अंदर, राइट। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर कोई दीन नहीं हासिल होगा, कोई दीन का फायदा हासिल नहीं होगा, अगर ये दोनों चीजें ये अभी तक हमारे जहन में क्लियर नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको क्लियर कर लें अगर नहीं हो रही क्लियर तो। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने आखिरी बात कल की क्लास के अंदर पढ़ी थी जो कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक थी कि अल्लाह ताला ने इसे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको याद रखेगा, तुम अल्लाह को याद रखोगे, अल्लाह को हर हाल में अपने सामने पाओगे, अमन व आफियत खुश ऐशी के वक्त अल्लाह ताला को पहचानो तो तुम्हारी मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला तुमको पहचानेगा, जब तुमको सवाल करना हो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, मदद मांगने तो सिर्फ अल्लाह से मांग। ये सब तो नसीहतें हो रही हैं, ठीक है ना, ये सब क्या हो रही है, ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, फिर अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम इनको कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स बता रहे हैं, पहले तो वादे बयान किए, इसको वादा बयान करना कहते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये रिटर्न मिलेगा, तुम ऐसे करोगे तो ये तुम्हारी तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। अब यूनिवर्सल रियालिटी बता रहे हैं, वो क्या है कि जो कुछ दुनिया में होने वाला है कलम तकदीर उसको लिख चुका है, अगर सारी मखलूकात मिलकर उसकी कोशिश करें, इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नफा पहुंचा दे जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में नहीं रखा, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकेंगे, और अगर वो सब मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नुकसान पहुंचा दें जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो हरगिज इस पर कुदरत ना पाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर नसीहत, अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि यकीन के साथ सब्र पर अमल करो तो ऐसा जरूर कर लो, और अगर इस पर कुदरत नहीं है, यानी यकीन के साथ सब्र करने की अगर तुम्हें अभी कुदरत हासिल नहीं है, तुम्हें अभी वो मुशाहिदे का मुकाम हासिल नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें सैरें नहीं करवाई हैं, तुम्हें जो है वो अपनी मदद के मनाजर अभी तक नहीं दिखलाए, क्योंकि यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट येट, यू आर नॉट देयर येट, ठीक है ना, अभी तुम उसके मुतहम्मिल होने के काबिल नहीं हो, अभी से अगर तुम्हें नजारे करवा दिए ना तो तुम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दोगे, तुम हवाओं में उड़ना शुरू कर दोगे, अपने लिए जो है ना वो तज़किए के कामिल तज़किए के खुद से फैसले करना शुरू कर दोगे, मुझे तो बड़ा मुकाम, मुझे तो मुशाहदे मिलना शुरू हो गए, अब तो मैं बड़े आला मुकाम के ऊपर फायज हो चुका हूं, तो तुम अभी इस काबिल नहीं हो, तुम्हारा खमीर जो है ना वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें मुशाहदे नहीं करवाए, इस वजह से तुम बगैर मुशाहदे के बगैर यकीन के ही सब्र करो, करहन सबर करो, राइट, यानी अपने आप को फोर्स करो सबर करने के ऊपर, ठीक है। जब तुम सबर करते 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 उस मकाम तक पहुंचोगे जबकि तुम मुशाहिदे के काबिल हो जाओगे ना, तब अल्लाह ताला तुम्हें मुशाहिदी भी अता फरमाएंगे और फिर तुम्हारे लिए सबर करना आसान हो जाएगा, सबर करना आसान हो जाएगा बिकॉज यू आर नाउ सीइंग द रियालिटी, लेकिन ये शुरू में नहीं हासिल होता। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल कितनी तकलीफें बर्दाश्त करी हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी, नफसियाती भी तकलीफें बर्दाश्त करी हैं, अपने करीबी तरीन लोगों से, अपने लंगोटिया यारों से, अपने चचाओं से, राइट, अपने पड़ोसियों से, फिर उसके बाद जाकर के 10 नबवी के साल में, राइट, नबूवत के 10वें साल में जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज अता फरमाई, ठीक है, मेराज की जो सैरें करवाई ना, जो मुशाहदे अता फरमाए, ये पहले साल में अता नहीं फरमाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले साल में नजर आ गए, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो किसी किस्म का, वो तो दुनिया के अंदर ये मामला चल रहा है ना, कोई सैर को थोड़ी करवाई गई है बाहर जाकर के, तो वो तो फिर कोई भी तखयलात ही, हमें क्या फरिश्ते नजर नहीं आते, बहुत सारे ऐसे हैं उनको तो पता नहीं क्या क्या नजर आना शुरू हो जाता है, तो उसको तो जो है वो जहन का तखय्युल करार दे करके रिजेक्ट किया जा सकता है जो इस दुनिया के अंदर किसी को नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो करते गए करते गए, जो कहा गया उसके ऊपर अमल करते गए, जो कहा गया उसके ऊपर अमल करते गए, करते 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 करते, यानी सबर करते करते, बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामिल मुशाहिदा अता फरमा दिया मेराज के सफर के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही होता है, हमारा भी यही प्रोसेस है, हमें भी अपनी चक्की पीसनी पड़ेगी और पीसेंगे तभी जा करके उस मकाम पर पहुंचे, यानी हमें भी ये करहन सबर करना पड़ेगा, तब जा करके जो है ना वो मुकाम अता होगा, वरना नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहतें करनी शुरू फरमा दी, ठीक है, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल रियालिटी बयान फरमा रहे हैं कि खूब समझ लो कि अल्लाह ताला की मदद सबर के साथ है और मुसीबत के साथ राहत और तंगी के साथ फराखी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत उनको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी, हमने भी उनको पढ़ लिया, हमने भी उनको सुन लिया, लेकिन क्या हमारे ऊपर इनका वही असर हो रहा है जो कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला के ऊपर असर हुआ। क्या ख्याल है जी? मेरे ऊपर तो वही असर हुआ क्योंकि मैं तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला जैसी हूँ, राइट। कल जो है ना वो हमें किसी ने मैसेज किया, हम उनको समझा रहे थे कि अल्लाह की बंदी आप जो है ना वो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अनहा और फातिमतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अनहा से ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि सीधा सीधा भाई आपको क्लास में ऐड होना है तो अपना नाम बताएं, ठीक है ना? आपके नाम को जो है हम कॉन्टैक्ट्स में सेव करेंगे, फिर आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिस तरह से माशाल्लाह कई सौ खवातीन को ऐड किया हुआ है। लेकिन माशाल्लाह तकवे के इस मुकाम पे फाइज, ठीक है ना, कि फरमा रही है कि जी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, आप मेरे नाम की जगह तालिबा लिख दीजिए, आप मेरे नाम की जगह तालिबा लिख दीजिए। हमने कहा भाई हर सिस्टम में आएंगी तो सिस्टम के फायदे भी हासिल होंगे, लेकिन सिस्टम के कुछ तकाजे भी होते हैं, राइट। सिस्टम के कुछ तकाजे भी होते हैं, वो तकाजा आपसे क्या कर रहे हैं, नाम बता दें आपको कॉन्टेक्ट में जो है वो सेव कर लेंगे, फिर उसको आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नहीं, नाम नहीं बताऊंगी। भाई क्या मतलब नाम नहीं बताएंगी, ठीक है ना? वही कहा कि क्या आप अपना नाम छुपा करके ये उम्महातुल मोमिनीन और बिनातुल सालेहात से ज्यादा मुत्तकी, क्या उनका नाम किसी को नहीं पता? नबी अलैहिस्सलाम की फलानी बीवी का नाम किया था, नबी अलैहिस्सलाम की फलानी बेटी का नाम किया था, और राइट नाम भी पता है और दूसरी तफसीलात भी पता है कितनी सारी। हम अपना नाम नहीं बताएंगे, अपना एक सेल्फ है ना तकवा का मेयार बनाए। भाई आपसे हम ये तो नहीं कह रहे कि आप सड़क पर चलती चलती जो है वो लोगों को अपना नाम बताना शुरू कर दें, ये तो नहीं आपसे कह रहे, राइट। हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप जो है वो अपना नाम जो है वो लिख करके जो है वो मजामीन छापना शुरू कर दें, और ये हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप पहले जो है वो YouTube से अपना दीन सीख रही थी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज्यादा गुमराही होती है YouTube के जरिए से दीन सीखने की। तो आप निजाम में आ रही हैं, नाम बताएं हम आपको सेव कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मान करके नहीं दिया, ठीक है ना? तो हमने उनको समझाया कि भाई आप बगैर निजाम के, तो फिर वही होता है ना कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर जवाब सुने आप जरा ना। जब हमने ये कहा ना कि निजाम के तकाजे होते हैं तभी निजाम से फायदा होता है, वरना बेनिजाम के तो फिर यूट्यूब वाला इल्म ही हासिल होता है जो नफ्स और शैतान की उस्तादी की वजह से गुमराही का मूजिब बनता है, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है। तो जवाब आगे से क्या देती हैं कि नफ्स और शैतान की गुलामी वही करते हैं जिन्हें हवा में उड़ने की तमन्ना होती है, जिसकी नजर सिर्फ जमीन पर होती है तो वो सिर्फ आजजी का तलबगार होता है। जिसकी नजर सिर्फ जमीन पर होती है वो तो सिर्फ आजजी का तलबगार होता है, ठीक है? हमने उनको फिर यही जवाब दिया, जैसे आप आजजी के तलबगार हैं ना, राइट। अल्लाह ताला नफ्स व शैतान के मकर व फरेब से हिफाजत फरमाए, और क्या कर सकते हैं यार, ठीक है? तो ना ऐसे शैतान इंसान को गुमराह करता है कि अपने आप को आजजी का तलबगार डिसाइड कर लिया अपने बारे में, और जो है वो यानी अजीब, तो ये होते हैं शैतान के धोखे, ठीक है? अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर देता है इंसान, कुछ हाथ में नहीं होता लेकिन समझता है कि सब कुछ हाथ में है। इसी को चंद क्लासों पहले आपके सामने बात हुई थी, इसी को जहालत, जहालत की इंतहा कहा जाता है, हाइट ऑफ इग्नोरेंस इसी को कहा जाता है, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका भी तलाक फरमा दिया, फरमाया फला तुज़क्कू अन्फुसकु, ठीक है? अपने नफ्स को जो है ना वो पारसा करार मत दो, अपने नफ्स को जो है ना वो मुज़क्का करार मत दो कि मेरी तो निगाह जो है वो जमीन पर होती है तो नफ्स और शैतान के हवाले मैं कोई थोड़ी हो सकती हूं। नफ्स और शैतान के तो वो हवाले होते हैं कि जिनकी जो है ना वो हवा में उड़ने की तमन्ना होती है। उसूल तो आपने सही बयान फरमा दिया, लेकिन क्या ये उसूल आपके ऊपर अप्लाई होता है? ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि ये आप पर भी अप्लाई हो रहा है ये, और आप जो है वो यानी उसूल तो सब पे अप्लाई हो रहा है लेकिन आप जो है वो इसके दूसरे वाले हिस्से के मिसदाक हैं, ठीक है ना? हवा में उड़ने वाली की मिसदाक आप नहीं है, आप दूसरे हिस्से की मिसदाक हैं, यानी आपकी निगाहें तो जमीन पर हैं, आप तो आजजी और इनकिसारी वाली हैं, इस वजह से नफ्स और शैतान आपको गुमराह नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ठीक है ना। और अकल का ये हाल है कि जब हमने कहा ना कि आप जो है वो फातिमतुल जहरा और उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका जवाब ये देती हैं कि दीन है ही इसलिए ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें, उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चल सकें। अगर हर 100% नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका ये जवाब देती हैं कि ज्यादा मुत्तकी बनने की मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं तो उनकी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही। तो भाई नक्शे कदम क्या है? क्या उनका नाम नहीं पता उम्मत को? राइट? क्या उनका उनका नाम उम्मत वालों को नहीं पता? उनका नाम उम्मत को तो क्या, उनका नाम तो काफिरों को भी पता है। राइट? लेकिन नहीं समझ में आ रही, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, और पता नहीं अपने आप को क्या समझ करके बैठे हुए, और YouTube से दीन हासिल कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। इंशाल्लाह खवातीन को भी ठीक है, पर्दा फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, कि हवा में उड़ना जो है वो शुरू कर दें और अपने बारे में जो है वो कामिल तज़किए के फैसले करना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है पर्दे का। बहरहाल अल्लाह करे सुन रही हूँ, अल्लाह करे कुछ बात समझ में आ जाओ, आ गई हो उनके। बहरहाल तो आगे फरमाते हैं, अच्छा हाँ, तो बात क्या हो रही थी कि क्या हम अबू हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु के लेवल पर है कि हमने पढ़ा हम पर भी वही असर हुआ, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु पर भी जितना असर हुआ था वही हम पर भी हुआ। तो अगर हुआ तो फिर तो अल्लाह खैर फरमाए, अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम पर भी वही असर हो गया, अल्लाह रहम फरमाए फिर हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर वही असर नहीं हुआ जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु पर हुआ होगा, तो उसकी वजह क्या है? ये समझने की वजह नहीं, बल्कि वाकई असर नहीं हुआ, हकीकत यही है कि हमारे ऊपर वो असर नहीं हुआ जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु पर हुआ। तो भाई क्यों वैसा असर नहीं हुआ, वजह क्या है इसकी? ठीक है, इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि फॉर अस, राइट, हमारे और आपके लिए दिस इज थ्योरी, दिस इज थ्योरी, ये जुबानी कलामी बातें हैं ना जो कि हमने किताब में पढ़ ली, नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब बातें हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये थ्योरी है ना। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये सिंक इन कब करेगी, ये वाकई हमारे समझ में और हमारे यकीन का हिस्सा कैसे बनेगी? ये तो नहीं हुआ, तो ये कब होगा, ये कैसे होगा? ठीक है, सवाल अगर समझें तो उसका जवाब देने की कोशिश करना। ये क्यों नहीं सिंक इन हो रही होती हमारे अंदर, क्यों हमारे यकीन का हिस्सा ये बातें नहीं बन रही है, हमारे लिए थ्योरी क्यों रह रही है? ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई जवाब दे सके, जब हमारे अंदर तलब होगी, तलब हमारे यहाँ तो होती है, बहरहाल तो तलब नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना, एहसान वाली कैफियत नहीं आई, तो भाई क्यों नहीं आई एहसान वाली कैफियत? ठीक है, क्यों नहीं आती हमारे अंदर एहसान वाली कैफियत ना? चले, जवाब आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे दे सकेंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं कि देखें, थ्योरी को फिक्र में तब्दील होने में, ठीक है, थ्योरी के फिक्र में तब्दील होने में, सोच में और समझ में तब्दील हो जाने में एक चीज रुकावट बनती है, एक चीज रुकावट बनती है जो नहीं तब्दील होने देती इस तहरीरी मवाद को या इस जुबानी मवाद को जो हमने सुना है, असल में हमारी फिक्र का हिस्सा बनने में जो नहीं तब्दील होने देती ना, वो एक रुकावट है। उस रुकावट को इंसान का नफ्स कहते हैं, उस रुकावट को इंसान का नफ्स कहते हैं। इस नफ्स वाली रुकावट को दरमियान से हटाना पड़ता है, ठीक है ना। ये जितनी बड़ी रुकावट होगी उतना ज्यादा जो है ना वो इधर नहीं आ पाएगा, वो थ्योरी प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगी। और प्रैक्टिस तो क्या, प्रैक्टिस की तो बात हम करते भी नहीं है, हम तो अमल की तो हम बात भी नहीं, हम तो सोच और फिक्र की बात करते हैं। वो सोच में ही नहीं आ सकेगी हमारी, हमारी थिंकिंग ही उसके मुताबिक नहीं हो सकेगी अगर रुकावट बड़ी होगी। तो इस रुकावट को घटाना पड़ता है, छुटाना पड़ता है, यानी छोटा करना पड़ता है इस रुकावट। जितना जितना ये रुकावट छोटी होती जाएगी उतना उतना थ्योरी जो है वो हमारे अंदर सीप इन करती जाएगी, सिंक इन करती जाएगी। और अगर ये रुकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो सारी की सारी थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी हमारे फिक्र और सोच के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, इसी को नफ्स को मारना कहते हैं, इसी को नफ्स का तज़किया करना कहते हैं, इसी को नफ्स से अम्मारा को नफ्स से मुतमइन्ना से तब्दील करना कहते हैं, ठीक है ना, इसी को नफ्स की इस्लाह कहते हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नफ्स की इस्लाह हो रही थी कि उन्होंने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सामने सुपुर्द किया था, पामाल किया था। अब नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो इन तक पहुंच रही थी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, नफ्स की रुकावट नहीं थी, नफ्स जो है वो पामाल हो चुका था, कुचला जा चुका था, दुबका हुआ बैठ गया था, एक होता है ना खड़ा हुआ पहलवान, है ना, अब इधर से जो है वो कोई चीज पहुंचाने की कोशिश करे लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मोटा सा लंबा चौड़ा पहलवान खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो आप तक वो बात पहुंचने नहीं दे रहा, ये नफ्स भी इसी तरह का पहलवान होता है, ठीक है। तो अब अगर ये पतला कमजोर हो करके पिटपिटा करके अगर ये बैठ जाए जमीन के ऊपर या लेट जाए जमीन के ऊपर तो अब तो ये रुकावट नहीं बन सकता ना, तो अब उधर से जो चीज आ रही होगी वो पूरी की पूरी हमारे जहन के अंदर, हमारी सोच, हमारे फिक्र के अंदर पहुंच जाएगी, और जब फिक्र और सोच में पहुंच जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेज पॉसिबल होगा, यानी उसको अमल में लेकर के आना, राइट। लेकिन अगर सोच और फिक्र का ही हिस्सा नहीं बन पा रही तो अमल कैसे हो सकता है, कोई अमल नहीं हो सकता उस वक्त, और जो अमल होता भी है ना वो असली अमल नहीं हो रहा होता, वो एक धोखे का अमल हो रहा होता है बगैर सोच और बगैर फिक्र के, जिस अमल की वैल्यू नहीं होती है, उसको अमल कहते भी नहीं है बल्कि उसको फेल कहते हैं, उसको फेल कहते हैं, ठीक है ना, और फेल जो होता है ना उसका सवाब नहीं होता, उसका फायदा नहीं होता, फायदा और सवाब तो अमल का होता है, और अमल वही होता है जो सोच और फिक्र के साथ किया जाए, वही अमल होता है, भेड़ चाल चलना या ऊपर से जो बस मम्मी डैडी को करते हुए देखा वही करना शुरू कर देना जिसमें सोच और फिक्र अपनी कोई इन्वॉल्व नहीं है, उसको अमल नहीं कहते, उसको फेल कहते हैं, ठीक है। तो ये नफ्स की रुकावट ये फिर अपने आप को पामाल करने से होती है, खुद करें तो आसान है, ये किसी शेख के सामने, किसी के सामने अपने आप को सुपुर्द करके और उनकी नसीहत सुन करके, उनकी रोक टोक को जो है वो बर्दाश्त करके, उनकी इवन डांट डपट को बर्दाश्त करके, सबसे क्या होता है नफ्स जो होता है वो कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है, या तो इस तरीके से इसलाह हो जाती है, और अगर इस तरह से नहीं कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए फैसला किया है इसलाह का, तो फिर अल्लाह ताला फिर दूसरे तरीकों से पिटाई कर करके इसलाह करवा देते हैं फिर, ठीक है ना, हमारे इरादों को तोड़ते हैं, हमें जो है वो मुश्किल में मुबतला फरमाते हैं, हमें जलील और रुसवा करवाते हैं, दूसरे दुनिया के मखलूक से जलील रुसवा करवाते हैं, और इस तरह से अगर हम फिर भी दामन नहीं छोड़ते तो फिर हमारे नफ्स की इस तरह इसलाह हो जाती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत जिल्लत और रुसवाई और खौरी वाला रास्ता है, ठीक है, और ये वाला रास्ता बहुत आसान रास्ता है जो कि सहाबे कराम वाला रास्ता है, ठीक है। तो मास के लिए क्या सोचना, मतलब ये हुआ कि कोई काम से पहले उसकी फजीलत याद करना या उसका अजाब याद करके अमल करना, नहीं अभी जो बात हो रही थी ना ये बिल्कुल अलग बात हो रही थी, आप बिल्कुल अलग सवाल कर रहे हैं, ठीक है, बहरहाल गौर कीजिएगा जरा से, जो अभी जो बात हो रही थी ना तो आप इसको अभी समझ नहीं पाई हैं, तो दोबारा सुनेंगी तो इंशाल्लाह समझ में ज़्यादा आएगी, फिर और सुनेंगी तो फिर और समझ में आएगी, फिर और सुनेंगी तो और समझ में आएगी, और फिर जो है वो इसकी तकरार करें, दोहराई करें अपने चंद साथियों के साथ मिल करके तो और समझ में आएगी, और फिर भी समझ में ना आए तो आप उस्ताद से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपने जो सवाल किया है बिल्कुल अनरिलेटेड सवाल है इस बात से, अच्छा अफसोस है, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अफसोस है कि कुरान के इस वाज़ह ऐलान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भर की तालीमात के बावजूद ये उम्मत फिर इस मामले में भटकने लगी, यानी सारी तालीमात जो कि बाकी उम्मत तक भी, तो हमारी तक खाली ये तो नहीं कि 21वीं सदी में हम तक पहुंची और हम इस पर अमल नहीं कर रहे, नहीं बल्कि 1300 साल में भी ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनके लिए दिस वॉज मेयर थ्योरी, ठीक है ना, उन्होंने भी थ्योरेटिकली इन बातों को पढ़ा और इन बातों को सुना, लेकिन नफ्स के तज़किये के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे थे। सारे नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इवन माजी बईद के अंदर भी थे, नफ्स के तज़किये पे मेहनत नहीं हो रही थी, बस जो है ना वो अल्फाज पढ़ लिए, अल्फाज सुन लिए। तो फिर क्या हुआ, उनका भी यही हुआ कि उम्र भर की तालीमात मौजूद थी नबी अलैहिस्सलाम की, हिफाजत की भी तालीमात मौजूद मौजूद थी, बिल्कुल सही सही पहुंची उम्मत तक। लेकिन इन सब के बावजूद फिर इसी मामले में भटकने लगी, क्योंकि सिंकिन नहीं हुआ ना वो मैसेज। तो सारी खुदाई इख्तियारात मखलूकात को बांट दिए। कल का बयान अल्लाह करे किसी ने सुना हो आप में से, ठीक है ना, वो यही बात थी। सारे खुदाई इख्तियारात जो है वो मुस्लिम हीरोज में बांट दिए, पीरों में बांट दिए, मौलवियों में बांट दिए, या कोई और इस किस्म के सलाउद्दीन अयूबी थे उनमें बांट दिए, महमूद गजनवी में बांट दिए, तारिक बिन ज़ियाद में बांट दिए, मूसा बिन नसीर में बांट दिए, या नुसैर में बांट दिए, राइट, कि जी उन्होंने फलस्तीन फतह कर लिया, इन्होंने स्पेन फतह कर लिया, उन्होंने जो है वो सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया, इन्होंने फलाना फतह कर लिया, इन्होंने फलाना फतह कर लिया, और जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो है वो इतने लाखों को जो है वो उनके दफ्स का तज़किया फरमा दिया, और जो है वो जो इंडिया में थे ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है वो 7 लाख मुसलमानों को का हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, राइट। तो सारा का सारा जो है ना वो खुदाई इख्तियारात इंसानों में बांट दिए। ये नहीं कह रहे कि वो अल्लाह वाले नहीं थे, उनका मुकाम जो है वो कम था, है? और वो हमारी मोहब्बतों के मुस्तहिक नहीं है, हरगिज हम ये बात नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से तो नजर हट गई ना, अल्लाह की तरफ से तो नजर हट गई, और नजर किधर जमी, मखलूक के ऊपर, चाहे वो अच्छी मखलूक थी चाहे वो बुरी मखलूक थी, उसी के ऊपर नजर फंस के रह गई उसी के ऊपर। ठीक है, कुरान तो ऐसा नहीं करने देता ना, फिर कुरान तो ऐसा नहीं करने देता, अल्लाह का कलाम तो ऐसा नहीं करने देता, वो तो मखलूक की बात करता भी है, लेकिन साथ साथ मुस्तकिल खालिक की तरफ हमें रीडायरेक्ट करता रहता है, मुस्तकिल खालिक की तरफ रीडायरेक्ट करता रहता है। जैसे कल रात के बयान में कुछ मिसालें जो है उस वाकया अहज़ाब से कुरान मजीद से पढ़ करके आपके सामने रखी। ठीक है, आज ऐसे मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जो मुसीबत के वक्त बजाय खुदा तआला की पुकारने को पुकारने के और उससे दुआ मांगने के मुख्तलिफ नामों की दुहाइयां देते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये एक्सट्रीम बिदती हजरात की बात हो रही है अब, राइट, कि वो दुआ अल्लाह से मांगते भी नहीं, बल्कि जो है वो मज़ारों के ऊपर या मज़ारों के जो मजा मुजावर होते हैं उनके पास जा करके अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं। ये एक्सट्रीमिटी है, लेकिन इवन जो सही अकीदा वाले लोग भी कहलाते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी रविश के ऊपर होते हैं, इसी रविश के ऊपर होते हैं। बस ये हमारे का ये देवबंदी अकाबरीन हैं और वो बरेलवी अकाबरीन है, बरेलवी अकाबरीन जो है बिदतों खराफात के अंदर लगे हुए हैं, और देवबंदी अकाबरीन जो है ना ये असल लोग हैं, और इन्होंने सारा असल काम किया हुआ है, इन्होंने ही किया हुआ है सारा का सारा काम, ना उनको खुदा याद ना इनको खुदा याद। तो भाई ये तो अकाबरीन ने नहीं सिखाया था हमें, अकाबरीन का जिंदगी का मकसद, उनकी जिंदगी का जो 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 उनका गोल था, जो मिशन था, वो ये तो नहीं था कि लोगों को अल्लाह से काटो और अपने आप से जोड़ो, ये तो उनकी मेहनत नहीं थी, राइट, नबी अलैहिस्सलाम की ये मेहनत तो नहीं थी कि लोगों को अल्लाह से काटो और नबी से जोड़ो, राइट, ना ईसा अलैहिस्सलाम की ये मेहनत थी कि लोगों को अल्लाह से काटो और ईसा से जोड़ो। लेकिन इंसान जब अल्लाह वालों की बात नहीं मानता और सुनने की कोशिश ही नहीं करता और समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो फिर शैतान जो है वो उसको ऐसे गुमराह करता है कि वो अल्लाह से काट देता है और नबी के साथ जोड़ देता है, किसी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया कि हाँ भाई ये अल्लाह की औलाद है ना उस बिल्ला, या नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया कि यही आलिमुल गैब हैं, यही जो है वो हाजिर हैं और नाजिर हैं और सब कुछ यही है, राइट, और ये है तो बस है वरना कुछ भी नहीं है। यानी बेशक नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम ऐसे ही है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मिशन तो ये नहीं था ना, उनकी जिंदगी का मिशन तो था कि खुद भी कामिल बंदगी इख्तियार करना और अल्लाह के बंदों को भी बंदगी सिखाना और अल्लाह से जोड़ना। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो हम ये कोई उनका हक अदा नहीं कर रहे। अगर हम उनके मिशन को जो है वो बिल्कुल जो है वो मुस्तरद करके अपनी तरफ से एक मिशन बना लें नबी अलैहिस्सलाम का, ठीक है, तो मखलूक ये उम्मत ने फिर, उम्मत से मुराद यहाँ पर जो सारे नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे अल्लाह वाले और जिन्होंने बात को समझा उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो बाकी हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है कि उन लोगों से दुआएं मांगने के मुख्तलिफ नामों की दुहाई देना शुरू कर दी और उन्हीं से मदद मांगने, खुदा ताला की तरफ ध्यान तक नहीं होता। यही तो सारा का सारा रोना है, अल्लाह की तरफ ध्यान तक नहीं होता, या ध्यान होता है तो ऐसा होता है कि अपना दिल हल्का कर रहे होते हैं अल्लाह के सामने, लेकिन अल्लाह को इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि वो मेरे मसलों को हल करेगा, अल्लाह को इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि वो मेरे साथ इन्वॉल्व है, रेसिप्रोकेशन चल रही है, हर चीज का एक रिस्पॉन्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं समझते अल्लाह ताला। जैसे तस्वीर के सामने रोते हैं ना, अब्बा की तस्वीर रखी हुई अब्बा के सामने दिल को हल्का कर रहे हैं, लेकिन अब्बा तो मर चुके हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, अब मसला तो मेरा हल नहीं कर सकते। वही खुदा का भी मामला हमने यही बनाया हुआ है, रो रहे होते हैं खुदा के सामने लेकिन खुदा को इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि वो हम मेरा मसला हल करे और मैं अपना मसला हल नहीं करूंगा बल्कि वो मेरा मसला हल करे, ठीक है। तो अंबिया व औलिया के तवस्सुल से दुआ मांगना ये दूसरी बात है और वो जायज है, क्योंकि वो उनसे दुआ नहीं मांगी जा रही, वो अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है, इनको बस वसीले के तौर पर पेश करने के लिए कि ए अल्लाह इनका आपके नजदीक अगर कोई मकाम है जो कि है यकीनन है, तो मैं इनके वास्ते से दुआ मांगता हूं कि मुझे भी इनसे मोहब्बत है, राइट। क्योंकि वसीला जो है ना ये बगैर मोहब्बत के पेश नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता कि आपको किसी वली अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, आप उनको जो है वो अल्लाह की वली होने की वजह से मुकाम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको वसीले के तौर पर अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं कि इनके वसीले से मैं आपसे दुआ मांग रहा हूं, दुआ कबूल फरमा लीजिए। नहीं, वसीले के तौर पर किसी अल्लाह के वली को या नबी को पेश करना ये उसी वक्त होता है जब आपको उस वली से मोहब्बत हो, क्योंकि असल में उनकी जात को आप पेश नहीं कर रहे, आप उनकी जात के साथ जो आपका मोहब्बत का ताल्लुक है उसको वसीले के तौर पे पेश कर रहे हैं। फर्क है इन दोनों बातों के अंदर, बात समझ में आ रही है। हम उनकी जात को वसीले के तौर पे नहीं भाई, वो तो अपनी कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं बल्कि मजे कर रहे हैं अपनी कब्र के अंदर, आप क्या उनको कब्र से निकाल करके कोई बैतुल्ला के सामने जाके खड़ा कर रहे हैं, देखिए देखिए मैं इनको पेश कर रहा हूं आपके सामने अब मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। नहीं, आप उनकी जात को पेश नहीं कर रहे हैं वसीले के तौर पर, आप तो उनके साथ अपनी मोहब्बत के रिश्ते को वसीले को देखिए, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत आपकी निस्बत से करता हूं क्योंकि ये आपके वली हैं, मेरी इस मोहब्बत को कबूल करके आप मेरे मसले को हल फरमा दीजिए, ये है वसीले का मतलब। और अगर मोहब्बत ही ना हो तो फिर कहां से वसीला आएगा, फिर तो वसीला आएगा नहीं, फिर तो क्या होता है जिनको मोहब्बत नहीं होती तो वो फिर कहते हैं वसीला तो कोई चीज ही नहीं होती, राइट, वो वसीले का इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं पेश करने के लिए, है ना भाई, उनके पास पेश करने के लिए कोई नहीं है, उनको तो हृदय के अंदर जो है वो कीड़े नजर आते हैं, नऊज़ बिल्ला, उन्होंने ये गलत काम किया था, उन्होंने ये गलत काम किया था, उन्होंने ये गलत काम किया था, तो जब अल्लाह के वो औलिया को के अंदर कीड़े नजर आने शुरू हो जाए तो फिर मोहब्बत तो नहीं हो सकती, और जब मोहब्बत नहीं हो सकती तो वसीला भी नहीं हो सकता, और जब वसीला नहीं हो सकता तो फिर जो है ना वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, राइट, कि अंगूर जो है वो मेरी पहुंच से बाहर थे तो मैं अंगूरों को हासिल तो कर नहीं सकता, तो अंगूरों को ही खट्टा कहना शुरू कर दिया, तो उसी तरीके से जो है ना वो वसीले को ही जो है वो गलत कहना शुरू कर दिया। ये कोई हो चीज ही नहीं कोई होती है, ये कोई चीज ही कोई नहीं होती है, अल्लाह के बंदे तुम्हें नसीब नहीं है ये मोहब्बत, तो इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि ये होती नहीं है, राइट, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, उनको बहुत अल्लाह वालों से मोहब्बत है, ठीक है ना, बाप के लिए गाली बर्दाश्त कर लेंगे, हजरत हमारे हजरत का कौल है ये, ठीक है ना, कि बाप के लिए गाली बर्दाश्त कर लेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देखे ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस वक्त का करंट जो है वो हेड न्यूज किया है इंडिया के मुसलमानों वाली, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मजार को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, ढाना चाहते हैं, और एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है कि नहीं, उनका मजार जो है ना, यानी उनकी जो कब्र है, मजार से मुराद यहाँ पे कब्र थी खाली, ये नहीं कि उनकी बिल्डिंग की जो कोई अहमियत है, नहीं, कब्र मुबारक की, भाई अल्लाह की विलायत जो है ना वो ऐसा मुसलमानों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करती है कि फिर इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी, और इतने दूसरे बड़े बड़े मसले खड़े हुए हैं राइट, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ऐसा फोकस बना हुआ है, ठीक है ना, ये होती है मोहब्बत, सही है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि, और ये मोहब्बत किसने पैदा करी, ये औरंगजेब आलमगीर ने पैदा नहीं करी, उन्होंने तो अल्लाह को राजी किया, तो अल्लाह ने जो है वो उनकी मोहब्बत जो है फिर लोगों के दिलों में पैदा करी है ना, वो कोई थोड़ी कब्र में बैठे अपनी मोहब्बतें पैदा फरमा रहे हैं लोगों के दिलों के अंदर, वो तो कर गए अपना काम जो उन्होंने करना था जिंदगी के अंदर जो करना, ठीक है। आखिर आयत में फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादी वहुवल हकीमुल खबीर, यानी अल्लाह ताला ही अपने सब बंदों पर गालिब और कादिर है, काहिर का ऐसे तर्जुमा किया उर्दू जुबान के अंदर, और सब उसके तहत कुदरत और मोहताज हैं, यही वजह है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इंसान, ख्वा अल्लाह का रसूल मुकर्रब हो, ख्वा अल्लाह का रसूल मुकर्रब यानी करीब जो होते हैं सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल होते हैं, या दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, अपने हर इरादे में कामयाब नहीं होता और उसकी हर मुराद पूरी नहीं होती, नहीं, इरादे करता है, नेकी के इरादे करता है, और इरादा करने के ऊपर उनको सवाब मिल रहा होता है, लेकिन उनके इरादे पूरे नहीं हो रहे होते, इरादों में से सिर्फ वही इरादा पूरा होता है जो कि अल्लाह की मर्जी होती है, उसके अलावा कोई उनका इरादा पूरा नहीं होता, अल्लाह उनके सारे इरादे पूरे नहीं फरमा रहे होते, ठीक है। अली रज़ा तआला का कितना खूबसूरत कौल है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है, यानी मैं अच्छे अच्छे इरादे करता था, मैं बड़े बड़े इरादे करता था, नौजवान थे ना, और बड़े जो है वो बहादुर, और बड़े जो है वो क्या कहते हैं जो जवानी की एक वो एक एनर्जी होती है अली रतान के ऊपर, वो पूरी उतरती थी, तो बड़े बड़े इरादे करते थे अच्छे काम करने, ये कर लूंगा, ये करूँ, ये करूँ, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, ये नहीं, ठीक है ना, ये नहीं पूरा होना, ये नहीं पूरा होना, फेल हो जाता है इरादा इंसान का, अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज का भी आदत है, पता नहीं कहाँ से आदत मुझे शुरू हुई थी, मेरे ख्याल में तो मैट्रिक के जमाने से शायद ही शुरू करी थी, ठीक है, हत्ता के अपने जो है वो उस्तादों में बात मशहूर हो गई कि ये जो है ना ये तो थिंग्स टू डू लिस्ट बनाते हैं, और हमारे जो पहले उस्ताद साहब थे जिन्होंने हमें आदत से जोड़ जोड़ा, अल्लाह उनको उसके ऊपर बेहतरीन जदा खैर अता फरमाए, वो डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना यही होता है कि जो डॉक्टर होते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारे रेजिडेंट्स होते हैं, हाउस जॉब या रेजिडेंसी जो लोग कर रहे होते हैं ना, तो डॉक्टर जो है ना वो उनको काम बता रहा होता है, तो उन्होंने अपने पास एक चेकलिस्ट बनाई हुई होती है, ठीक है ना, कि डॉक्टर ने ये काम बताया हमें, हमारे प्रोफेसर साहब ने, हमारे जो है ना वो सीनियर ने हमें ये काम बताया है, अब उनमें से हमें ये काम करना है, तो वो अपने साथ एक चेकलिस्ट रखते हैं और वो उसको जो है ना वो टिक ऑफ करते रहते हैं, या टिक ऑफ नहीं उसको क्या कहते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, हाँ मैंने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, काम कर, तो वो चूंकि डॉक्टर डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि काशिफ जो है ना ये तो अपने पास उसी तरीके से रेजिडेंस की तरीके से ना एक लिस्ट रखता है हर वक्त, और उसके अंदर से है ना वो चेकआउट करता रहता है कि हाँ भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो अब जो है ना वो जैसे जैसे मसरूफियात बढ़ती रही, पहले तो अकेले थे, फिर शादी हो गई तो एक के बाद दो हो गए, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने औलाद देनी शुरू करी, चार औलादें अल्लाह ताला ने दे दी, और दूसरे दीगर जिम्मेदारियां बढ़ गई, हजरत ने भी बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी राइट, तो अब जो है ना वो जो चेकलिस्ट है ना थिंग्स टू डू लिस्ट वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली नहीं बढ़ती चली जा रही है, और वो इतनी बड़ी हो गई कि हमारे बच्चे जो है वो मजाक करते हैं हमारे साथ, अब्बू की जो है ना वो थिंग्स टू डू लिस्ट जो है वो इतनी बड़ी है, और उनको पता भी नहीं है कि मेरी कितनी बड़ी है, इतना तो मुझे भी नहीं पता कि पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो थिंग्स टू डू लिस्ट से बनाई हुई, लेकिन वो थिंग्स टू डू लिस्टें क्या है, वो इरादों की लिस्टें हैं राइट, वो इरादों की लिस्टें हैं कि भाई भूल ना जाए, ये हमने अपने अकाबरीन से सीखा है, थानवी रहमतुल्लाह वो भी थिंग्स टू डू लिस्ट बनाया करते थे, ठीक है, तो ये कोई नाजायज काम भी नहीं है कि ये तो भाई दीन के खिलाफ है, तवक्कुल के खिलाफ है कि आप थिंग्स टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इरादे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कोई फजूल का और बेकार किस्म का इरादा नहीं है कि अभी उधर जाके मैच खेलना है, अभी उधर जाके टूर्नामेंट देखना है, अभी उधर जाकर के जो है वो फलाने रेस्टोरेंट का खाना चेकआउट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज उन थिंग्स टू डू लिस्टों के अंदर नहीं होती है, पहले भी नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम कई सालों पहले शुरू किया था मुशायरे के साथ जुड़ना, तो इरादे। लेकिन होता क्या है उनके अंदर से, हैरान होते हैं जब जरा सा लुक बैक करते हैं ना इसके ऊपर, हैरान होते हैं कि वाकई मैंने कितने इरादे किए थे लेकिन वही हुआ जो कि अल्लाह चाहता था। मेरे इरादे का इसमें कोई फैसला नहीं था कि इरादा किया है तो बस होके रहेगा, नहीं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि हम समझ रहे थे कि ये लेस प्रायोरिटी की हैं वो हो जाती हैं, और ऐसी चीजें जिनके हम समझ रहे थे कि हाई प्रायोरिटी की हैं वो नहीं होती हैं। अल्लाह ताला का हाथ नजर आता है, अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, इसी को मुशाहिदा कहते हैं। और वो जो के कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं मेरा ये काम ही हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, बीवी को कह रहे हैं तुम्हारी वजह से मेरे काम नहीं होते, राइट, तुम ही जो है वो सारी के सारी कसूरवार हो कि जिसकी वजह से मेरे काम नहीं होते, मेरा हर वक्त सर खाती रहती हो, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार। और उनका 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 ध्यान अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं है कि भाई अल्लाह ने बच्चों में मसरूफ कर दिया, अल्लाह ने बूढ़े बाप के अंदर मसरूफ कर दिया, अल्लाह ने जो है वो दूसरी जिम्मेदारियों में मसरूफ कर दिया, इस वजह से मेरा इरादा पूरा नहीं हुआ, राइट। तो अल्लाह का हाथ देखना या अल्लाह का हाथ ना देखना, अभी इंसान की अपनी मिजाज के ऊपर होता है, अपने इख्तियार के ऊपर होता है। अपने गुस्से को काबू करें, गुस्से का इलाज करें, नहीं इलाज हो रहा तो मुराकबा करें, है? लतीफा रूह का मुराकबा करें तो गुस्से का जो है वो हमारे मशाइख फरमाते हैं इलाज हो जाता है। ये तो नहीं है ना कि काम जो है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा और आप गुस्सा जो है बच्चों पे निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, टेम्पर जो है वो हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, दीगर अमराज के अंदर खुद भी मुबतला हो रहे हैं, दूसरों को भी मुबतला कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ नजर ही नहीं आकर के दे रहा आपको। हकीकत तो यह है ना कि आप नेकी का इरादा करें लेकिन पूरी वही होगी, कर वही पाएंगे जो कि अल्लाह का चाहेगा ना, आपकी मर्जी तो नहीं चलनी इसके अंदर, ठीक है ना भाई, समझ में आई बात ना सबको इंशाल्लाह। खुसूसन मर्दों का यह बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना, लेकिन कुछ मतलब खवातीन का भी होता है, घर के अंदर भी वो इरादे करती हैं, पूरे नहीं होते तो फिर वो थप्पड़ मारती हैं बच्चों को, या जो है वो अपने और अपने फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों के ऊपर निकाल रही होती हैं, और जहां शौहर जो है जरा सा दबा हुआ होता है तो शौहर पे भी निकाल रही होती हैं, ठीक है। तो ये नुकसान के काम है, दुनिया और आखिरत दोनों का जो है ना नुकसान होगा, इससे फायदा कोई नहीं होगा। तो हजरत ने क्या फरमाया कि चाहे अल्लाह का रसूल मुकर्रब हो या दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, अपने हर इरादे में कामयाब नहीं होता है और उसकी हर मुराद पूरी नहीं होती है। नेक नियतें करें, नेक इरादे करें, अल्लाह ताला इरादे के ऊपर सवाब अता फरमाएंगे। हत्ता कि ये नहीं जो हमारे तबलीगी भाई कहते हैं इरादा करने पर एक नेकी मिलती है, नहीं सिर्फ एक नेकी नहीं मिलती, वो भी तो है ना हदीस मुबारका के अंदर ही ना, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है ज्यादा उनको याद है वो मेरी इसलाह फरमा सकते हैं कि एक्चुअली हदीस है या कोई और वाकया है, कि एक शख्स का गुजर जो है बहुत गरीब शख्स था, उसका गुजर हुआ एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर सोने का पहाड़ बना हुआ था, यानी अंबार बना हुआ था सोने चांदी वगैरह का ना, तो उसने इरादा किया अल्लाह ताला से दिल में दुआ करी, ए अल्लाह अगर ये मेरे पास होता ना मैं सारा का सारा आपके रास्ते में खर्च कर देता, मैं सारा का सारा आपके रास्ते में खर्च कर। अल्लाह ताला ने उस पूरे अंबार के अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जो सवाब था वो इसके नाम अमान में लिखवा दिया, तो खाली एक नेकी तो नहीं मिली ना, राइट। तो इरादा जो है ना ये कम चीज नहीं है, इसके ऊपर तो हर चीज का दारोमदार है, और सोचना तो हमें यही चाहिए कि मेरा काम है इरादा करना, अल्लाह का काम है इसको पूरा करवाना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला इतनी कंजूस तो नऊज बिल्ला नहीं है कि जो हमारा करने का काम था उसके ऊपर हमें एक खोटी पाई पकड़ा दें, आप ये लो जाओ बस एक नेकी, बस उससे ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हें, ये तो नहीं है अल्लाह ताला का मामला, राइट। तो वो हकीम भी है कि उसके तमाम अफआल ऐन हिकमत हैं, फिलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, जो अल हकीम होता है ना, उसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, वो फजूल में काम नहीं कर रहा होता, अबस में काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अल्लाह ताला के तो तमाम अफआल ऐन हिकमत हैं, हमारी छोटी सी अकल में कोई बात समझ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नहीं आ सकती हमारी छोटी सी अकल में अल्लाह की हिकमत समझ। और हर चीज को वो जानने वाला भी है, इसमें लफ्ज काहिर से अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का और लफ्ज हकीम से उसके इल्म में मुहीत का बयान करके बतला दिया कि तमाम सिफात सिफात कमाल इल्म का तमाम सफा सिफात कमाल इल्म कुदरत में मुनहसर है, ठीक है। यानी जितनी सिफात होती है ना, अच्छी अच्छी क्वालिटीज, वो किस बात पर इन्हिसार करती हैं, किस बात पर बेस करती हैं, कमाल इल्म और कमाल कुदरत। कि इल्म जो है वो बड़ा हो ज्यादा हो या कामिल हो, अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, हमारा इल्म कामिल नहीं हो सकता लेकिन ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना इल्म ज्यादा होगा और फिर जितना कुदरत ज्यादा होगी, उसी के ऊपर फिर बाकी सारी सिफात है डिपेंडेंट, नहीं। और अगर इल्म और कुदरत ही नहीं है तो फिर जो है वो खामो ख्याल की सिफात है अपनी तरफ से, इमेजिनरी से सिफात, जैसे वो अभी खातून के हालात आपको सुना सुनाए थे, ठीक है। अपने जोम के अंदर जो है वो अपने आप को जमीन पे आजजी और इनकसारी वाला बना लिया, ठीक है ना। हकीकत में तो ना इल्म है ना कोई कुदरत है, ठीक है। तो ये धोखा होता है खाली, शैतान जो लगा देता है फिर इंसान को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों में यकता है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है ऐसे इल्म वाला और ऐसे कुदरत वाला जैसे अल्लाह है। कैसी तौहीद है ना अल्लाह ताला की, कैसे तौहीद का बयान है ना, कि शुरू में जो हमारे मशाइख को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, कि जो ये बातें सुनी और फिर हम तक नकल फरमाई, कि ये सूरह अनआम जो है इसके अंदर अल्लाह की तौहीद का बयान है। अब देखिए चला चला जा रहा है, बदायर शुरू में पढ़ा तो ऐसा लगता था कि जी तौहीद तो बड़ा सिंपल सिंपलिस्टिक किस्म की चीज है, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह तो वाहिद है, अल्लाह के सिवा कोई बात के काबिल नहीं, चलो जी आगे बढ़ो बाकी चीजों के ऊपर आ जाओ, राइट। लेकिन नहीं, तौहीद में कितनी सारी बातें आ जाती हैं, चले चले जा रही है तौहीद का बयान, चले चले जा रहा है, चले चला जा रहा है, खत्म ही नहीं होकर के तेरा, ठीक है ना भाई। इसको कहते हैं अल्लाह का कुरान अजीम शान, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद अपनी तौहीद बयान फरमा रहे हैं, फिर उसके बाद अपने बंदों को तौफीक अता फरमा रहे हैं कि मेरी इस बयान को अब जो है ना वो खोलो, इसकी तफसीर करो। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह जैसे अल्लाह के बंदे, उन्होंने तौहीद के बयान की तफसीर फरमाई हमारे सामने, ठीक है। पांचवी आयत का एक खास वाकया नुजूल आम मुफस्सरीन ने, आमतुल मुफस्सरीन ने नकल किया है, यानी बड़े कसरत से मुफस्सरीन ने एक खास वाकया नकल किया है कि एक मरतबा अहले मक्का का एक वफद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह होने का दावा करते हैं, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवाह कौन है, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो आपकी तस्दीक करता हो, हालांकि हमने यहूद से नसारा से इसकी तहकीक में पूरी कोशिश की है कि आपकी जो है वो वेरिफिकेशन हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, कोई नया बंदा आता है तो हम उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, ये ऐसे लोग थे कि नबी अलैहिस्सलाम इनके पास नए बंदे नहीं थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश से पहले से जानते थे कि किसके किस खानदान में आ रहे हैं, उनकी निशानियां पहले से लोगों के सामने पूरी हो रही थी, और फिर बचपन से लड़कपन से मुस्तकिल ये नबी अलैहिस्सलाम को देखे चले जा रहे थे आपकी सिफात और आपकी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बुरहानात, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम आपकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, राइट। कितना जुल्म, कितना ज्यादा जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम को इससे तकलीफ और दुख इन्होंने पहुंचाया था, ठीक है। और फिर ये कि अबू बकर सिद्दीक रतान जो है, जो कि मेराज जैसे वाकई की भी तस्दीक करने के लिए मौजूद थे, या तो ये कि उनसे हर एक का वास्ता तो नहीं पड़ता था, वो तो नहीं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रदाना उन्होंने अपनी तस्दीक लिख करके जो है वो वायरल कर दी थी तो सब तक पहुंच गई, ऐसा तो नहीं था उस जमाने के अंदर। तो भाई जिसके सामने तस्दीक करी उसको पता चला, या चंद और लोगों को पता चल गया कि हाँ अभी तस्दीक करने वाले अबू बकर जैसे लोग मौजूद हैं, हर एक को तो नहीं पता चला। तो ये भी हो सकता है कि थे मौजूद लेकिन हर एक को तो नहीं पता था उनकी तस्दीक का। या ये भी हो सकता है कि पता था कि वो तस्दीक करने वाले हैं, लेकिन झूठे का क्या मामला, झूठा तो हर चीज का इनकार कर देता है। नहीं नहीं मानना तो जो कर भी रहे ना, तो उसका भी कह देंगे नहीं, हमें तो कोई तस्दीक करने वाला नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारे एहतमालात हो सकते हैं। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई, उनकी इस बात के ऊपर यह आयत नाजिल हुई कि कुल अय्यु शयइन अकबरु शहादतन, यानी आप कह दीजिए कि अल्लाह से बढ़कर किसकी शहादत हो कि जिसके कब्जे में कुल जहान और सबका नफा व गरर है, फिर आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। और अल्लाह ताला की गवाही से मुराद, अल्लाह ताला की गवाही से मुराद क्या है? ये नहीं कि जैसे कि एक औरत जो है ना वो बड़ी मजलूम होती है और लोग उसको जो है वो इल्जाम देते हैं, वो कहती है नहीं मैंने ये काम नहीं किया है, वो कहते हैं सबूत पेश करो इसका, तो कहती है मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है। ठीक है ना, अल्लाह मेरा गवाह है लेकिन उसके पास कोई सबूत होता नहीं है, बस वो अल्लाह के साथ अच्छे गुमान की वजह से अल्लाह ताला को ही अपना हाजत रवा मान करके कह देती है अल्लाह ताला मेरा गवाह है, लेकिन उसको कोई गवाही मिली तो नहीं होती अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ अल्लाह ताला कोई ऐसा मामला कर दे फ्यूचर के अंदर जिसकी वजह से उसको गवाही मिल जाए, तो वो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो ये कहती है तो इसके पास गवाही होती तो नहीं है ना, राइट। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा मामला भी नहीं था कि आप के पास गवाही मौजूद नहीं थी, नहीं अल्लाह ताला की तरफ से गवाही मिल चुकी थी नबी अलैहिस्सलाम। वो क्या गवाहियां थी? वही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की गवाही से मुराद वो मुअज्जज़ात और आयाते बय्यनात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने के मुताल्लिक जाहिर फरमाई। ठीक है, मुअज्जज़ात नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा और कामिल तरीन मुअज्जा खुद कुरान करीम, ठीक है ना, क्योंकि वो अरबी जुबान दानी का दौर था और इन लोगों को बड़ा उसके ऊपर जो है वो नाज था अपनी अरबी जुबान के महारत के ऊपर, और अल्लाह ताला ने इन्हीं की महारत को तोड़ करके, इनको आजिज करके, इनको हरा करके अरबी जुबान के अंदर इस कुरान को बतौर मौजे के पैदा किया। इसी वजह से पीछे जो हमने खुलासे तफसीर में पढ़ा है कि कुरान मजीद की जो जुबान थी, जो असलूब था, वो नबी अलैहिस्सलाम का की गवाही पर तकवीनी शहादत थी। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने यानी इनको मजबूर कर दिया कि इसको तुम मानो कि ये इंसान का कलाम नहीं है, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये तकवीनी शहादत। और दूसरी शहादत कौन सी थी जिसको तशरीई शहादत कहा, तो उसके ऊपर बयानुल कुरान में हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि ये तशरीई शहादत थी। ठीक है ना, यानी जो कुरान मजीद के अंदर मजामीन थे, जो कंटेंट था कुरान मजीद का, जो मीनिंग था कुरान मजीद का, ये तशरीई शहादत थी। ठीक है ना, यानी इसमें अल्लाह ताला के अहकाम थे और अल्लाह ताला के जो है ना वो यानी वादे थे, और अल्लाह ताला की जो है वो रेवलेशंस थी चीजों के बारे में। जैसे एक बात जो हम बच्चों की साइंस क्लास में हमें हमारे हाथ आ गई, अल्लाह का करम है कि हाथ आ गई, तो वो हमने बहुत बयान करी लोगों के सामने। ठीक है, कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय अफला युमिन। अब ये जो जुमला, ये जो आयत है ना, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय शैइन हय अफला युमिनून, ये कोई अरबी जुबान के मुआजे की बुनियाद पर नहीं पेश की जा रही है कि इसके अंदर अरबी जुबान का कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा कमाल है, कोई ऐसा इज्ज कद है, वो भी है उसके अंदर, वो तो पूरे कुरान मजीद के अंदर है। इस आयत को किस तौर पे पेश किया जा रहा है? कंटेंट के तौर पे, मवाद के तौर पे, कि इसके अंदर जो मजमून बयान किया जा रहा है ना, ये ऐसा मजमून है जो जिसका कि कोई इनकार नहीं कर सकता, जो कि इंसान को जो है ना वो गवाही देने के लिए काफी है कि देखो हर शय के बारे में ऐसा क्लेम कर लेना, ये कोई इंसान, कोई जिन, कोई फरिश्ता कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ हर शय को बनाने वाले ही ऐसा क्लेम कर सकता है कि हमने हर शय को जो है वो पानी से बनाया है। ठीक है, और फिर जब आजकल के साइंसदानों ने जो है वो अपना जो है वो इजादात वगैरह करी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की और अपने माइक्रोस्कोप्स की और इन सब चीजों की, तो अब इसके ऊपर बाकायदा मुशाहिदाती जो है वो दलील भी आ गई कि वाकई वाटर इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। हमारा अपना बदन जिसमें जो है वो हमें पानी सिर्फ पीने वाला पानी समझ में आता है, नहीं, हमारा बदन 70% से ज्यादा पानी है, और पानी के बगैर लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कंटेंट वाली शहादत है। कुरान का कंटेंट जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हक्कानियत की दलील है। तो जो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने के मुताल्लिक जाहिर फरमाई, इसीलिए इसके बाद अहले मक्का को खिताब करके इरशाद फरमाया, अइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मा अल्लाह आलिहतन उखरा, यानी क्या अल्लाह ताला की इस गवाही के बाद भी, यानी इतने सारे मोजज़ात और इतनी आयात बय्यिनात के बाद भी तुम इसके खिलाफ इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद भी हैं और ये जो है वो अल्लाह के रसूल नहीं है। तुम इसके, खैर इस आयत के अंदर तो सिर्फ इतनी बात है कि अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद भी हैं, अगर ऐसा है तो तुम अपने अंजाम को तुम समझो, तो अपने अंजाम को तुम समझो। मैं तो ऐसी गवाही नहीं दे सकता। कुल इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, यानी आप सरसम कह दीजिए कि अल्लाह ताला यकता माबूद है जिसका कोई शरीक नहीं। क्या लिखा है उन्होंने कि जैसे कि आपने फरमाया कि भोले बनना जब कोई फासिक कुछ बताए और चालबाजी पर आए तो नेक को भी रद्द कर देते हैं। जी ठीक है, फिर क्लास का वक्त मुकम्मल हो चुका है तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं। कोई सवाल हो? मुझे बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है कि क्लास की जगह कुरान पढ़ दो, यहाँ मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। ये फीलिंग जो आपको आता है ना, ये शैतान की तरफ से आती है। ठीक है, क्योंकि कुरान पढ़ो तो भाई क्लास से पहले पढ़ो, क्लास के बाद पढ़ो, यही क्योंकि क्लास छोड़ करके कुरान पढ़ो, ठीक है ना, तो कुरान समझने की तो फिर मौका नहीं मिलेगा ना फिर उसके बाद। ठीक है, और ये कौन कौन ही ये बात चाह सकता है कि आप कुरान समझें नहीं, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान ये बात चाह सकता है। ठीक है, कुरान पढ़ने से कौन मना कर रहा है? भाई पढ़े ना क्लास के बाद, अभी क्लास खत्म हो गई, अब जो है वो शुरू हो जाए कुरान पढ़ना, तिलावत करना। ठीक है भाई, कुरान तो हुदल लिन्नास ना, हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, तो अगर हिदायत का रास्ता बंद हो जाएगा, क्लास जो है वो बिल्कुल नहीं सुननी है, तरसियत कुरान बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं समझना, तो फिर हिदायत कैसे मिलेगी? तिलावत से तो हिदायत नहीं मिलती, तिलावत से तो बरकतें मिलती हैं, हिदायत तो नहीं मिलती तिलावत से ना। हिदायत के लिए तो कुरान मजीद को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शैतान के धोखे होते हैं, वो कुरान पढ़वा करके भी इंसान को नुकसान पहुंचाना। दीन का इल्म हासिल करना भी नफिल इबादत से 1,000 बेहतर है, मैं यही अपने आप को कहती हूँ। जी, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ आबिदिन, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, बिल्कुल सही हदीस है ये, कि जो समझ रखने वाला एक बंदा होता है ना, वो 1,000 बेसमझ आबिदों से ज्यादा शैतान के ऊपर बारी होता है। तो शैतान कब चाहेगा कि फुकाहा जो है वो इतने सारे बन जाएं, दीन की समझ रखने वाले भी जो है वो ज्यादा बन जाएं, उसका तो काम खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि वो तो भारी हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, इस वजह से वो कहता है इबादत करो इबादत, क्योंकि इबादत करने वाला बेसमझ इंसान जो इबादत कर रहा होता है उसको तो बहकाना और फुसलाना मेरे बाएं हाथ का काम है, तो तुम करो खूब तिलावत है, खूब जो है वो इबादतें करो, कुरान सीखने की कोशिश ना करना, है ना, वरना मेरे लिए मुसीबत बन जाओगे। इसी वजह से वो ये बातें करता रहता है। ठीक है, तो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।